देखो जब पृथ्वी के ऊपर भार अधिक बढ़ जाता है तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाती है। तो क्या रूप में भगवान अवतार लेते हैं अभी बताया, उसका कोई अंत नहीं है। कृष्ण का अवतार एक कारण से नहीं कई कारणों से हुआ है। मतलब ये पृथ्वी पापियों के वजन से दब जाती है, वो कहती है कि बड़े बड़े पहाड़ों का दिग्चों का भार मेरे से उठाया जा सकता है, लेकिन जो असत्य और पाप बढ़ जाता उसको नहीं समा सकती हूँ। तो एक समय गऊ का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी को पुकार लगा रही, सारे देवताओं को साथ में लेके गई। गऊ रूप रख चली पृथ्वी, पहुंची ब्रह्मा पास, मोपे भार पड़ा मेरे प्रभु जी संकट मेटन हार, ऐसा नाम तिहारा जी पृथ्वी का भार उतारो जी। तो भगवान ने उनकी सबकी पुकार सुनी, तो पुकार योग माया को आज्ञा देनी। भगवान के दो स्त्रियां हैं, लक्ष्मी जी और नारायण हम सब जानते हैं, लेकिन एक जो है माया, माया कहते हैं ना राम की माया राम ही जाने, वो प्रभु के हृदय में रहती है। जब आवश्यकता पड़ती है तो योग मत उस माया को आज्ञा देते हैं कि अब मेरे लिए ये काम करना है। तो योग माया को आज्ञा देनी, तुम तो नंद घर जाए, हम जन्मेंगे वसुदेव के, करें ब्रज की सार, पापी मार भी डालेंगे पृथ्वी का भार उतारेंगे। तो इतना कह करके पृथ्वी को और देवताओं को सांत्वना दे दी। फिर भगवान ने कहा कि देखो ये वसुदेव जी जो है उनका विवाह देवकी से कराओ और उग्रसेन के पास जाकर के उनका रिश्ता जोड़ने का काम करो। अब तो आगे मैं जो भी कुछ होगा वो मैं संभाल लूंगा अपने आप, उनको तो करना ही था भगवान को। तो उग्रसेन ने ब्याह रचाया सुतकर अपने साथ, मतलब अपने सुत को पुत्र की आज्ञा लेके कंस की। वसुदेव ने ब्याह रचाया सुतकर अपने साथ, दानी मानी सब देवी देवता वसुदेव जी के साथ, जो सारे अच्छे लोग थे देवता देवियां वो सब वसुदेव के साथ में थी, और वो कंस के साथ में तो दुष्ट लोग थे जो वो थे ही, लेकिन कंस को वो बहन प्यारी बहुत थी। तो बहन को पहुंचाने के लिए वो रथ में बैठ करके जा रहा है, जा रहा तो भगवान इशारा तो कर ही देते हैं पहले से। तो जब वो जा रहा है तो कंस जब बहन को पहुंचाने जा रहा है तो आकाशवाणी हो रही है कि हे कंस, जिसको तुम पहुंचाने के लिए जा रहे हो इस देवकी का आठवां गर्भ तेरा नाश करेगा। तो उसने आकाशवाणी सुनी, सबने सुनी लेकिन उसने भी सुनी, तो उसको झूठ कैसे कर सकता है। तो वो सोच रहा है कि क्या करना चाहिए मुझे, तो देवकी का केस पकड़ करके बोले इसको खड़ग निकाली उसने, बोलो अभी खत्म कर देता हूँ मैं आठवें गर्भ तक की मैं परीक्षा ही क्यों करूंगा। तो वसुदेव जी सोचे कि ये तो दुष्ट है, अभी इसको मारने में कितनी देर लगेगी, ये तो मार डालेगा देवकी को, तो इस टाइम तो इससे बचाएं और फिर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तो बोले हे कंसराज, देखो तुम शूरवीर हो और तुम इतने मतलब धर्मात्मा, ये सब उसका खूब तारीफ कर रहे हैं उसकी कि इसे ब्याह करके ये अभी तो घर पे भी नहीं गई है, शादी के चिन्ह भी इसके अंग के ऊपर सारे चिपे हुए हैं, तो इसको इस टाइम मारोगे तुम्हारी संसार में कितनी अपकीर्ति होगी, तो ऐसा करना तुम इसके जितने भी बच्चे हो वो सब ले लेना। तो पहले तो उसने कुछ सोचा बिचारा, फिर बोलते ठीक है देवकी से क्या बैर है, वसुदेव जी से क्या बैर है, इसकी आठवीं संतान से बैर है मुझे तो ये देवकी जी के पति जो है वसुदेव जी वो तो ये कह रहे हैं कि तो सारे बच्चों को मार देना, तो ठीक है उसको ये बात दिमाग में बैठ गई। तो कंस राज के बहन बनोई कैद करे तत्काल, जाकर के कैद में डाल दिया। और भर भादु की रैन अंधेरी जन्मे यादव राय, यादव कुल के सिरमौर भगवान कृष्ण वैकुंठाधीश ने वो जेल में जन्म लिया। आज साधारण स्त्री को भी छोड़ देते हैं भैया कि ये गर्भवती है जेल में जन्म, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जन्म कहाँ हुआ, जेल के अंदर, जेल के अंदर हुआ, सब जानते हैं कोई बताने की चीज नहीं है। तो जब जन्म हो चुका, पहले जितने बच्चे उनको सबको मार दिया था, एक गर्भ उनका नष्ट होगा, वो रोहिणी जी के गर्भ में रख दिया था योग माया ने, और योग माया थी वो नंद जी के घर में जन्म ले चुकी थी उसी टाइम। तो जब कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए, और ये और भी बताऊंगी मैं पहले क्यों दर्शन दिए, तो आप विष्णु पुराण पढ़े तो ध्यान दे करके सुनिए, उसमें पढ़िए कि ये कहा कि हे माता मैंने जो वचन दिया था वो आज पूरा कर दिया, मैंने अवतार ले लिया है और अब ऐसे करो कि मुझे पिता जल्दी से जल्दी कारागृह से और गोकुल से, मतलब मथुरा से गोकुल पहुंचा दो, कहीं मामा कंस आ जाएगा तो मुझे मार डालेगा। उनको मारने का डर नहीं था, उनको ये डर था पहले जन्म में उन्होंने दिया था मतलब वरदान केकई को पुत्र रूप में जन्म लेने का, उनको ये डर था कि ये माता देव की मुझे दूध नहीं पिला दे। तो वो बोले बेटा क्या चीज में लेके जाऊं और कैसे लेके जाऊं, जेल के ताले बंद है। बोले पिता भय मत करो, योग माया ने सब ताले खोल दिए। बोले पिता पिता कांप रहे हैं वसुदेव जी कि बेटे मेरे तो फटे हुए तो वस्त्र हैं और कहां मैं रात में भगूंगा लेकर के। तो बोले देखिए ये कोने में सोप पड़ी है, सोप जो फटकने की होती है धानवान, वो खाना तो उनका जेल में बनता है बाहर से आता है, लेकिन वो थी वहां, इसके अंदर मुझे सुला लीजिए पिताजी और आप जल्दी करिए। तो कृष्ण भगवान को जब वसुदेव जी उस सोप में सुलाने जा रहे हैं तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या बोल रहे हैं उस सोप को, हे बांस की बनी हुई सोप, आज मेरे लिए झूला पलना गाड़ी मोटर सब कुछ तू है, नमस्कार करके पहली वस्तु तेरे से ही हुई है मतलब मिली है, तो मुझे मथुरा से गोकुल अच्छी तरह बस पहुंचा देना, मैं तुझे इतना मान दूंगा कि संसार जानेगा। तो आप लोग गाड़ी में बैठ जाते हो मस्ती से, घर बार व्यापार छोड़ के आते हो, कहीं नमस्कार मंदिरों में भी अच्छी तरह नहीं कर पाते हो, भागादौड़ में 10 लिस्ट साथ रहती है, वहाँ नाश्ता करेंगे, वहाँ दोस्तों से मिलेंगे, वहाँ खाना खाएंगे, वहाँ चाय पियेंगे, तो वो पूर्ण अपनी गाड़ी में बैठो तो नमस्कार करके बैठो कि घर अच्छी तरह पहुँच जाए। उस बांस की बनी हुई सोप में भगवान कृष्ण को सुला करके जब जेल से निकलने लगे तो ताले अपने आप खुल गए, बालक ले वसुदेव जी निकले ताले खुल गए साथ, जमना जाय जगाई जी कमर खारी के माई जी, मतलब सोप में भी अरग देते हैं छठमाई की तो जल में जाके देते हैं, तो ऐसे ही वसुदेव जी सिर के ऊपर टोकरी रखे वो सोप रखे और जल के जमना जी को जाकर के आधी रात में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो जाने लगे तो जमना जी ने ये सोचा कि मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे अंदर से जा रहे हैं तो मैं चरण छू लेती हूँ। तो वसुदेव जी ने जैसे सोचा कि तो बाढ़ आ गई कहीं, तो जमुना माता को बढ़ी हुई देख करके उन्हें टोकरी को उन्होंने ऊंचा कर लिया। जमुना माता चरण छुई के मारिक दिया बताए, ये मारिक तुम भूलो मत ना सीधा गोकुल जाए, सीधा गोकुल जाएगा वसुदेव जी, कांपिए मत, पुत्र को वहां सुला देना, कन्या आप ले आना। तो जमुना जी जब ऐसी बात कही, वो स्त्री रूप देवी रूप में जमुना जी आकर के उनको दर्शन दिया ये सब कही, तो वो जमुना जी ये भी बोल रहे हैं कि देखिए वसुदेव जी ये शिशु मेरे पति बनेंगे। तो वसुदेव जी ने सोचा कि किसका पति किसका पुत्र, मैं तो इस रास्ते से निकल करके वापस घर पहुंच जाऊं जेल में तो मेरी भलाई है। तो बोले कि कालिंदी से करुणा करके, जमुना का नाम कालिंदी भी है, भागवत में 8 पटरानियों के नाम में कालिंदी का नाम आता है, उससे भगवान कृष्ण ने ब्याह किया था। कालिंदी से करुणा करके कहने लगे वसुदेव हम आए हैं शरण तिहारी पूर्ण कर दो टेक, कि देखो हम तो तुम्हारी शरण आए हैं, जैसे आए हैं वैसे ही वापिस जेल में चले जाए वापिस। जमुना जी ने कहा ठीक है, तो वैसे का वैसा वसुदेव जी ने किया, पुत्र को तो वहाँ यशोमती को दे आए, सुला दिया वहाँ और कन्या को ले आए, लेकर के कन्या को जब जेल के अंदर वापस पहुँच गए तो ताले बंद हो गए अपने आप, भगवान की लीला थी। तो ताले बंद हो गए, जैसे ही बालक का रोना सुना, जैसे रोना सुना बालक का, जागे चौकीदार, घर घर खबर हुई है जी नगर में फिक्र हुआ है जी, घर घर में चिंता हो गई, नगर में एकदम फिक्र छा गया चिंता के मारे कि आज 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है तो पता नहीं कंस क्या करेगा। तो दौड़ करके कंस को खबर मिली, तो दौड़ करके वो आया, जब जेल वालों ने खबर दी कि ऐसे बालक का जन्म हो गया, महानीच लेने को आया बालक हमको दो, वसुदेव कन्या दिखला दी करता करे सो होए, नहीं किसी का सारा जी झूठा वेद तुम्हारा जी, वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए कंस ने उसका विश्वास किया। तो कारण क्या है कि झूठ कई जगह बोलना भी पड़ता है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए वसुदेव जी ने झूठ बोला। वो सत्यवादी थे, कंस विश्वास करता था। तो बोले कि देखिए, वसुदेव जी ने कहा कि भाई ये वेद शास्त्र झूठ हो गए कि देखिए कि ये बालक मतलब लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई है। तो कंसा एकदम से झुंझला गया। इतनी सुन कंसा झुंझलाया, पंडित लिए बुलाया, पंडितों को बुलाओ, पंडितों की वहाँ मीटिंग बुलाई। वो बुला करके बोलता है कि ये सब पंडितों के ढपोसले हैं, ढोंगबाजी करते हैं, ये क्या आकाशवाणी है, ये वेद है, ये शास्त्र है। तो पंडितों को डांटने लगा और बोले कि इनके कुटुम्ब खपाओ जी, घर में आग लगाओ जी, इन सब पंडितों के कुटुम्ब खपा दो और घर में आग लगा दो, मेरे से निर्दोष बच्चों की हत्या करवा दी इन्होंने कि आकाशवाणी बोली आठवां गर्भ मारेगा तेरे को, लड़का नहीं हुआ लड़की हुई है, कहाँ गई वो आकाशवाणी। तो पंडितों ने धमकाया उसको। पंडित कहने लगे ओ मूर्ख, वेद ने झूठा हो, वेद झूठ नहीं हो सकता है, कोई तुम में चूक पड़ी है, लगन दिया है कोई, झूठी साख भरी है जी, तुम में चूक पड़ी है जी, किसी कर्मचारी ने मिलके तुम्हारे जेल वालों ने और ऐसा ये सब किया होगा, आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। तो कंस बोला कि सामने दिख रहा लड़की है और वसुदेव जी उस लड़की के लिए देव की उस लड़की के लिए प्रार्थना करें, इसको छोड़ दीजिए, एक कन्या को मार करके मुझे और भी पाप लगेगा, तो मैं पंडितों के और इस आकाशवाणी के चक्कर में नहीं जाऊंगा। बाहर निकलने लगा कि इस कन्या से और इस लड़की से स्त्री हत्या का और सिर पे पाप चढ़ेगा। एक दफे तो वसुदेव जी ने देवकी का पाप कर रहा था, मैं मार रहा था जब छोटवा लिया था, लेकिन अब वसुदेव जी विनती कर रहे हैं और वो भी मतलब मन में सोच रहा है, तो बाहर निकल गया। लेकिन वसुदेव जी बोले इस दुष्ट का पता नहीं है कब वापिस आ जाए, मन में कांप रहे हैं, भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं कि हे प्रभु रक्षा करना, वो विष्णु भगवान गोद में है, सुला के आए हैं और उसी विष्णु की प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई मेरे शिशु की रक्षा करना, शिशु रूप में पुत्र रूप में पाया था उनको, तो उनको क्या पता है भगवान है, सब बोल रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है ना जल्दी से। तो बाहर जब कंस निकला तो वहाँ नारद जी मिल गए उसको बाहर, ये भगवान की माया से ही। नारद जी सामने से आ रहे थे और कंस जेल से निकल रहा था, तो कंस को नारद जी पूछते हैं कंसराज ये क्या हाल कर रखा, व्याकुलता में कहाँ भगे जा रहे हो, क्या कारण है। तो कंस ने सारी स्टोरी आदि से लेके अंत तक बतलाई कि ऐसे ऐसे देवकी की शादी हुई, ऐसे आकाशवाणी हुई, ऐसे आठवें गर्भ से मेरी हत्या बतलाई, इतने बालक मैंने मार दिया, अब लड़का नहीं हुआ लड़की हुई है। तो कंस ने कहा लड़की हुई है, तो नारद जी बोले लड़की हुई है क्या, बोले हाँ, तो बोले गर्भ तो आठवां है क्या, बोले हाँ गर्भ आठवां है। तो बोले मूर्ख ये क्या गलती कर रहे हो, जब गर्भ आठवां है तो अपना झमेला खत्म करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तुम अपना रास्ता साफ करके कांटे हटाओ, मार डालो, खत्म करो। तो उसने एक दफे तो अपनी बुद्धि से दिमाग में लगा कि लड़की को क्यों मारूं, फिर वो बोला कि गर्भ नारद जी को पाप बढ़वाने थे, तो बार बार में कह रहे हैं कि देखो कंसराज तुमको अच्छी तरह पता है ना गर्भ आठवां, बोलो हाँ बिल्कुल सही है गर्भ आठवां है। तो वापिस जेल में गया तो जाकर के देखते वसुदेव जी कहाँ पुठे किया, तो आ गया ये तो उसने लड़की को गोद से छीन लिया, योग माया थी वो, तो पकड़ टांग शिल्ला पे पटकी अपने गई आकाश, बिजली होकर कड़की जी पिछोकड़ बोली लड़की जी, अरे मेरे मारे से क्या हो पापी, तू बचने का नाय, तेरा बैरी जन्म चुका है, झूले गोकुल माय, दसोदा गोद खिलाए है, पलने माय झुलाए है। तो उस आकाशवाणी ने अब वो कन्या थी वो देवी रूप में उसको दर्शन दे करके और ये सब कहने सुनने से कंस को और भी ज्यादा ये हो गया कि ठीक है नंद है वो इसका वसुदेव का दोस्त है, दसोदा उसकी स्त्री का नाम है, तो ये गोकुल में कैसे पहुंचाया, चाबियां सारी जेल की मेरे पास थी, लेकिन ये आकाशवाणी फिर दोबारा हो रही है लड़की के रूप में, ये दुर्गा मेरे को दर्शन दे रही है। तो उसने फिर जाकर के अपने सभा में और ये कहा, सभा बुलाई कि जो कोई मारे उस बालक को दे दूं द्रव अपार, अंधन सारा दे दूंगा, घर का मालिक कर दूंगा। तो फिर आपको सबको पता है मारण त्यारण चली पूछ लो जहर लगा कैसी सुना मारी पूतना दीनी बैकुंठ पहुंचाए स्वर्ग में उस पूतना को पहुंचा दिया। और अकासुर बकासुर घटासुर कितने उसने भेजे हैं, कैसे कैसे भगवान कृष्ण ने उन सब बाल रूप में ही समझ लो 6-7 वर्ष के 8 वर्ष के हुए जब तक तो कंस को ही मार डाला था, कैसे कैसे कि तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान का क्या पहचान करोगे, उसको पहचान इतनी इतनी पहचान उसने दी, एक से एक काम किए, लेकिन फिर भी ब्रजवासी उनका कोई ब्रजवासियों को था कि ये कुछ है आत्मा, लेकिन इतने राजा इतने और सब उनकी कोई इज्जत करता था, ग्वालिया ग्वालिया कह करके उनको फुकारा जाता था, और किसी भी राजा ने खुश होकर के उनको लड़की नहीं दी कि कृष्ण के साथ हमारी लड़की का रिश्ता हो, ये भी सब पता भागवत में तो सब पढ़ते ही हैं। तो मतलब है उसका उनको इज्जत की क्या दरकार थी, उनको तो संसार का काम करना था। 16108 रानियां भगवान कृष्ण के बताते हैं कि थी, लेकिन किसी भी राजा ने खुश होकर के नहीं दी। मथुरा छोड़ करके फिर जाकर के और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने द्वारका बसाई, वो भी ये सब जानते हैं। द्वारका समुन्द्र से पृथ्वी उधारी लेकर के और द्वारका में द्वारका जी का भवन बनवा करके और सारे यदुवंशियों को और कुटुंब को मोहल्ले के जो भी जाना चाहता था वहाँ बन करके और प्रभु बना करके बैठे द्वारकाधीश। तो मतलब भैया इस भगवान की लीला का कोई अंत नहीं है। देखो जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेते हैं। आज रामा अवतार में जब आए तो मैंने कहा था ना कि दूध नहीं पिया कृष्ण भगवान ने जेल में, उसका थोड़ा सा बतलाती हूँ पहले का रामा अवतार का। तो रामा अवतार में जब भगवान वन भोग करके आ गए, वन से वापिस आ गए, राजा बन गए, लेकिन केकई को खूब आदर सत्कार करते, लेकिन केकई के मन की जो होती है दशा वो मतलब जलन की उसकी भाव थे वो मिटे नहीं। तो प्रभु तो जानते थे भगवान राम तो उसको सब माताओं से ज्यादा सम्मानित करते थे, लेकिन फिर भी एक रोज क्या हुआ कि मतलब जैसे सीता रोज चरण छूने जाती थी, पहले नियम भी था भवे अगल बगल घर में परिवार में जितनी स्त्रियां थी सबके चरण छूती थी, तो केकई के भवन में जब जाती थी तो केकई कहती थी ए बहु सीते बेटी तूने मेरे वजह से बहुत बहुत बन के कष्ट सहे, वो रावण कैसा था बेटा जो तुमको तकलीफ देता था इतने कष्ट दिए। तो सीता बतलाती है माँ ऐसा था ये था वो था ऐसे आके छल किया और वाणी से खूब बताती है, लेकिन केकई को कुछ और पूछना था। केकई बोली बेटी उसकी शकल कैसी थी, तो उसने बतलाई लेकिन बोली नहीं दीवार पे चित्र बना के दिखाओ। तो दीवार पे सीता से रावण का चित्र बनवा लेती है। जब रावण का चित्र बनवा लेती है राम शाम को जब राजधानी से आते हैं माता के पैर छूने के लिए तो जब पर्दा डाल देती है तो राम ने एक दफे देखा दो दफे देखा फिर सोचते कि ये इसका स्वभाव जो है शुरू से ही है, तो किसी का स्वभाव बदला नहीं जाता भैया, पहचानते सारे थे लेकिन फिर भी राजा दशरथ की रानी थी मतलब आदर सत्कार बाद में भी माता के समान ही उसको देते थे। तो भगवान राम ने एक रोज हट कर लिया कि नहीं माता मुझसे क्या छिपाना है मुझे दिखलाओ क्या है। तो उसने पर्दा हटा करके कहा देखो राम सीते आती है यहाँ मेरे चरण छूने के लिए, तो वो इतना दिन तक रावण की राजधानी में रही तो हो सकता है कहीं रावण की याद आ गई हो उसके दुख दिए किया ऐसे कैसे भी समझ लो अपनी तरफ से सफाई पेश कर रही है केकई। तो उसने रावण का चित्र बना लिया, केकई के भवन में तो बना नहीं सकती है, कारण कहने का मतलब उसका ये था कि वो सगी सास है और यहाँ उसने बना लिया, और कौशल्या के भवन में तो बना नहीं सकती थी ना उसका कहना मतलब, और यहाँ बना लिया। तो केकई बोली मैं पर्दा इसलिए डाल देती हूँ कि तेरे और सीता के प्रेम में दरार नहीं पड़ जाए। तो राम ने सोचा कि ओहो जो मैं धोबी से सुनता ना, आप धोबी की पढ़ते हो रामायण में मेरे को पता है धोबी के भी लिखे हुए हैं, तो धोबी जो कहा था ना अपनी स्त्री से कि मैं राम की जैसे स्त्री का भूखा नहीं हूँ, ये भी केकई के नौकर चाकरों की अफवाह फैलाई हुई है। तो छोटों से बात करने से बड़ी भारी हानि हो जाती है, छोटी बुद्धि मतलब छोटी जाति नहीं होती है छोटी बुद्धि वालों से। तो फिर राम ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए मुझे, पूरी प्रजा में चर्चा है सीता की वहाँ रहने की, और सारे अच्छी तरह से मतलब बदनामी फैली हुई है, तो अब मैं क्या करूँ। मैं राजा हूँ, राजा को राजा के आचरण से चलना चाहिए और पूर्वजों की कृति की भी रक्षा करनी चाहिए, और सीता निर्दोष है, लेकिन इस समय मैं धर्म संकट में फंसा हुआ, मैं क्या करूं। तो अपने विचार से और उन्होंने मन में सोचा कि अब सीता का त्याग करना होगा, इसके अलावा कोई भी मतलब हाथ में बाजी नहीं है मेरे। तो मंत्री को आज्ञा दी कि जाओ तीनों भाइयों को बुला के लाओ। राम ने आज्ञा दी, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत तीनों भाई वहां आए और देखो मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करना। सीता को वन में छोड़ के आओ, भोरे भोरे बुला के कहा राम ने, ऐसी बातें पड़ी है मेरे कान में, भेजू वन में सिया को ये ठहराई। तो लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे हैं, लखन रो रहे हैं, उनको पता था कि भैया ने त्याग कर दिया दिखता है, और सीता उनको सांत्वना बंधा रही है कि रो क्यों रहे हो, वन देखने की मेरी इच्छा थी, पता तो उसको भी था लेकिन वो सफाई पेश कर रही है कि हे लखन वन के दुख याद आ गए क्या, हम लोग वन के दुखों से क्या डरना है। तो लखन घबरा रहे हैं कि जब तो हम दो सिंह थे साथ में राम और लक्ष्मण, अब इस बिचारी की क्या दशा होगी, गर्भवती भी है, क्या बतलाऊं, क्या सोचूं, क्या बोलूं। तो जाकर के सीता को कहां छोड़ा, सीतामढ़ी है बिहार में, सीतामढ़ी आपने नाम सुना होगा, जानते भी होंगे, मंडी का मतलब कुटिया, तो वहां पास में वाल्मीकि आश्रम था। तो छोड़ सीता को लक्ष्मण जी जाने लगे, पशु पक्षी भी आंसू बहाने लगे, सीता के ऊपर इतना बड़ा अन्याय देख के पशु पक्षी भी तार गए, वो भी मतलब विलाप करने लगे, रो रहे हैं। जब सीता बोलती है लखन से, लखन लखन क्या बात है, मुझे वन में अकेली छोड़ करके इस तरह जा रहे हो, कारण क्या है। जब लक्ष्मण ने कहा माता हो सकता है भैया ने तुम्हारा त्याग कर दिया, अयोध्या में ऐसी ऐसी चर्चा फैली हुई है कि रावण के घर पे रही हुई सीता को और घर में रखते हैं, हमारे सूर्य वंश की कीर्ति को कलंक लगा रहे हैं। सीता बोली ऐसी बात है, जब अग्नि परीक्षा मेरी हो गई तो बताओ लखन फिर क्या बाकी रही। हे लखन तुम तो साक्षी थे, मेरी अग्नि परीक्षा हो गई थी वहाँ। बोले माता अवश्य सारे देवता आए थे, मेरे पिता दशरथ भी आए थे वहाँ, लेकिन राज अयोध्या का कर रहे हैं, इस टाइम अयोध्या की पब्लिक ने ये सब बातें उठाई है। तो बोले ठीक है, मैं सूर्य वंश की और महारानी बनी हुई इस टाइम, मैं मेरे पति के ऊपर कुल के ऊपर आंच नहीं आने दूंगी, स्वामी अपने धर्म का पालन करे राम, और मैं मेरे धर्म का पालन करूंगी, वन में रहूंगी। तो लखन अयोध्या में जाके ये डुडेरा पिटा देना कि सीता गर्भवती है। बोले माता मैंने रनवास में सब कुछ सुन लिया था, लेकिन ये सूर्य वंश का सूर्य वन में ही उदय होगा, मतलब भगवान राम का तेज वन में ही कोई पुत्र तुम्हारे पैदा होगा, माता ये महलों के सुख नहीं लिखे हैं। तो सीता की परिक्रमा करके और लखन वापिस जा रहे हैं। अब सीता के दो पुत्र हुए वहाँ, ये सब भी जानते हो, लो और कुश। तो सिया खड़ी पछताए मन अकुलाए, लो कुश वन में हुए, जो घर होते राजा दशरथ के, आज देते अयोध्या लुटाए, लो कुश वन में हुए। तो भैया धर्म के ऊपर बहुत बहुत आंच आती है, सबकी नजरें रहती है, धर्म निभाना बहुत कठिन है, यहाँ मंदिर में हमारे पास कितनी कठिनाइयाँ आती है, कितने संकट आते हैं, लेकिन उनको किसी की जान में कब कुछ छिपा करके कि नहीं सत्य के ऊपर हमें साथ लिए, मैंने सारे शास्त्रों को कोई ये नहीं है कि पढ़ पढ़ करके ही छोड़ दिया, उनका मंथन किया अच्छी तरह से कि हाँ धर्म एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अंश है, पूरा तेज है, धर्म के ऊपर ही सब कुछ है, पृथ्वी टिकी हुई है, आकाश खम्भ नहीं है खड़ा हुआ है, और धर्म सत्य सबसे बड़ा है, लास्ट में भी जाते हो जब मृत्यु होती है तो क्या बोलते हो, सत्य बोले गत्य है। अरे पहले से सत्य को थोड़ा इकट्ठा करो तो साथ वालों के सत्य से तुम्हारी गति थोड़ी होगी, गति तो तुम्हारा अपना किया हुआ सत्य इकट्ठा होगा। तो भैया ये भगवान की लीलाओं का और सत्य सत्य का और अवतारों का इनकी कोई मंथन करना चाहे तो मिनट में नहीं हो सकता है, वो सोच के वैकुंठ छोड़ के आते हैं। जब मैंने कहा ना कि कई ने इतना षड्यंत्र रचा, तो फिर एक रोज जब ये सब बातें पुरानी हो गई तो भगवान राम ने माता से पूछा कि हे माता, मैं जितना सुख तुमको देना चाहता हूँ, इतना कौशल्या और सुमित्रा की तरफ भी मैं इतना ध्यान नहीं रखता हूँ जितना तुम्हारा रखता हूँ, तुम चाहती क्या हो मुझसे ये बतलाओ, जो तुम चाहोगी वो ही मैं करूँगा। तो केकई ने कहा कि उसकी तो वरदान लेने की आदत थी, तो सब जानते ही है। बोली बेटे राम, मेरे को पूरा विश्वास है कि तुम मेरे वचन पूरे करोगे। तो बोले तुम मांग तो सही, क्या मांगना चाहती है? बोली मैं तेरे को ही मांगना चाहती हूँ, तेरे जैसा पुत्र चाहती हूँ। जब राम ने सोचा कि ओ ये मेरे जैसा पुत्र माता कारण, बोले बेटा तेरे जन्मने से और कौशल्या का कितना सम्मान हो गया, कौशल्या को तो मैं दबा के रखती थी, मतलब महारानियों में यही थी केकई, और अब उसका कौशल्या का जहाँ जाओ कौशल्यानंदन कौशल्यानंदन, तो तुम मेरे जन्म लोगे तो मेरा सम्मान बढ़ेगा। तो प्रभु ने सोचा कि ये तो अहंकार बढ़ाने के लिए मेरे को मांग रही है पुत्र रूप में, तो सोच के बोला मामा जन्म अवश्य लूंगा, इस शरीर से तो कैसे लूं, इतने युग बीतेंगे इतने अवतार होंगे उसके बाद में मैं तुम्हारे जन्म लूंगा द्वापर में। तो मतलब लेकिन एक शर्त मेरी भी है माता। बोली वो क्या है? बोली मैं तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा माँ। क्यों नहीं पियोगे दूध? मन में सोचा, भगवान ने सोच करके कहा दूध नहीं पीऊंगा, तो उसको उस टाइम होश ही नहीं था केकई को कि ये जन्म तो ले लेगा ना, तू जन्म तो लेगा। बोले अवश्य लूंगा दूध, तो सोचा उसने कि कोई भी तरह से पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने दूध जब बतलाया था ना कि वसुदेव जी कंस से, मतलब देवकी जी वसुदेव जी से कह रही है कि जल्दी मतलब करो, और कृष्ण कह रहे हैं कि जल्दी से मुझे कारागृह से निकालो, तो उनको ये डर था कहीं माता देवकी पुत्र के स्नेह में मुझे दूध नहीं पिला दे, वो स्वार्थ भरा दूध पी करके मैं संसार में लीला कैसे करूंगा। तो बच्चों को भैया जन्म से पहले ही संस्कार देने पड़ते हैं, माता पिता के संस्कार जो होते हैं वो गर्भ में ही हो जाते हैं, फिर उनको माता अपने घर की शिक्षा गुरु की शिक्षा अलग होती है, तो संस्कार सबसे बड़ा भगवान कृष्ण ने दूध नहीं पिया। दूध कब पिया? कारागृह के अंदर जब कंस को मार के और वसुदेव देवकी को छुटाए, उनके चरण छूने गए, जब देवकी जी के सपनों से दूध बहने लगा और वो भगवान कृष्ण ने उस टाइम दूध पिया। तो भैया भगवान की लीलाओं का अंत नहीं है। यशोदा, मतलब आप ये सोचोगे कि ये तो मतलब देखो पुराणों की कहानियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन मेल करो उनका। राजा दशरथ के तीन रानियां थी, सब जानते हैं, सारों को पता है ना, कौशल्या सुमित्रा केकई, वैसे तो और भी बहुत रानियां शास्त्र में, कहीं 700 का वर्णन आता कहीं 300 का वर्णन आता, लेकिन प्रधान ये तीन रानियां थी। अब कृष्णावतार में तीन कौन कौन मिली? एक तो देवकी, ये तो थी केकई, और एक थी दशोदा। दशोदा को जो वो क्या नाम था, कौशल्या, कौशल्या को पुत्र का सुख बचपन में भी वो लाड प्यार नहीं करती थी केकई के डर से, तो वो दशोदा जो नंद के घर में आनंद ले रही है नंदलाल का भगवान कृष्ण का, वो थी मतलब कौशल्या। और जो सुमित्रा थी वो बनी थी रोहिणी, मतलब लक्ष्मण थे वो, मतलब बड़े बने उस टाइम छोटे थे, इस टाइम बड़े बन के रोहिणी जो बलदेव जी थे वो माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया, वैसे वसुदेव जी का ही अंश है वो। तो भैया शास्त्र की चीजों का क्या क्या पूछोगे, दुनिया को बताना, पूछना है, कोई भी आता है जो चीज पूछता किसी भी, गीता से भागवत से रामायण से और महाभारत से, वो मैं अवश्य बता देती हूँ, आप भी पूछो और क्या पूछना चाहते हो सब बताऊंगी। जय बाबा जी।